दिन भर 26 अप्रैल शुक्रवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया नामांकन।
5 साल के बाद फिर एक बार काशीवासियों ने,
सुनिए क्या कहती हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की महिलाएं।
यहाँ का समस्या आधा अधूरा काम सब हुआ था, आवास ना मिला था, पानी हैंड पाइप से पानी पियत बा।
और विवेचना में करेंगे याद एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को।
Distinguished Flying Cross is a very great honor, मगर इनका double honor था क्योंकि Lord Louis Mountbatten जो थे Supreme Commander of Southeast Asia Command actually flew down to Imphal और उन्होंने DFC on the field दिया Squadron Leader Arjun Singh।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार कमलेश मठेनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले मोदी ने भैरव मंदिर में पूजा भी की। वाराणसी से मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय राय और गठबंधन की ओर से शालिनी यादव चुनौती पेश करेंगी। भारत के भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के संबंध में एक खबर आज भारतीय मीडिया में चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटेन स्थित कोर्ट में नीरव मोदी की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी गई है। हालांकि लंदन स्थित BBC संवाददाता कगन सबरवाल ने बताया है कि नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई ही नहीं हुई। पूरा ब्यौरा सुनिए गगन सबरवाल के ही शब्दों में।
आज नीरव मोदी को वीडियो लिंक के द्वारा कोर्ट में हाजिर किया गया। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया। वहाँ पे जज ने कुछ भी उनके बेल को लेके डिस्कस नहीं किया। तो पता नहीं इंडियन मीडिया ये क्यों बोल रही है कि उनका बेल थर्ड टाइम रिजेक्ट हुआ है। मैं नीरव मोदी के लॉयर आनंद दुबे से कॉन्टेक्ट में हूँ और उनके लॉयर ने भी कन्फर्म किया कि उनका बेल थर्ड टाइम अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ।
ये थी लंदन में मौजूद BBC संवाददाता गगन सबरवाल। श्रीलंका प्रशासन का कहना है कि ईस्टर के दिन हुए आत्मघाती बम धमाकों का हमलावर धमाकों में ही मारा गया। खुफिया विभाग के प्रमुख ने बताया कि जरहान हाशिम धमाकों के दौरान कोलंबो के शांग्रीला होटल में मारे गए। हाशिम एक कट्टर उपदेशक थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने पत्रकारों को जानकारी दी कि श्रीलंका में इस्लामिक स्टेट से जुड़े लगभग 130 अभियुक्त मौजूद थे। अभी भी करीब 70 ऐसे लोग श्रीलंका में हो सकते हैं। कोलंबो में धार्मिक नेताओं के साथ हुई एक बैठक में मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा कि उन्हें सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है कि वे इन लोगों को खोज निकालेंगे। हमारे सुरक्षा बल कुछ देशों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ किसी दूसरे देश की सेना नहीं है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है क्योंकि इसी सेना और पुलिस ने तमिल अलगाववादियों का भी सामना किया था। ये थे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मोजाम्बिक के उत्तरी हिस्से में भीषण बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। कुछ दिन पहले ही यहां काफ़ी तेज़ तूफान कीनत भी आ चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव सामग्री के साथ कई टीमों को प्रभावित इलाकों की तरफ रवाना कर दिया है। पिछले महीने मोजाम्बिक में इताई तूफान की वजह से सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने चीन से कहा है कि वह अपनी वैश्विक परियोजनाओं के चलते दूसरे देशों को बहुत अधिक कर्ज में ना डुबोए। बीजिंग में चल रहे एक सम्मेलन में क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा कि बेल्ट एंड रोड परियोजना वहीं शुरू करनी चाहिए जहां उसकी ज़रूरत हो। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भरोसा दिलाया कि चीन की तरफ से बाकी देशों में चलने वाली परियोजनाओं में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि अमरीका ने उत्तर कोरिया को पैसे देकर अमरीकी छात्र ऑटो वॉर्मबियर को रिहा करवाया। गुरुवार को वॉशिंगटन पोस्ट ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2017 में $20,00,000 अदा करके वॉर्मबियर की रिहाई सुनिश्चित करवाई थी। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। मेरा नाम है संदीप सोनी। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के कई बड़े नेता वाराणसी में मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संवाददाताओं से कहा,
5 साल के बाद फिर एक बार काशीवासियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, एक प्रकार से कल शाम को 5 बजे से लेकर अगर रात के 4-6 घंटे निकाल दें, शायद इतना लंबा रोड शो, 12-15 घंटे का रोड शो एक काशीवासी ही कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी, माँ गंगा के आशीर्वाद, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं।
बीबीसी संवाददाता सलमान रावी भी वाराणसी में मौजूद थे। मैंने आपसे कुछ देर पहले उनसे बात की और जानना चाहा वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के दौरान सबसे खास बात क्या नजर आई उन्हें।
एक तो चकाचौंध जो थी पिछले 2 दिन से, रोड शो और उसके बाद फिर नामांकन दाखिल करना। रोड शो में तो शो ऑफ स्ट्रेंथ जो उनका अपना था, वोटरों का था, पार्टी का था, वो नजर आया। और नामांकन भरने के वक्त में जो एनडीए के एलाइज हैं, यानी कि उनके जो गठबंधन के साथी हैं, जैसे नीतीश कुमार, ओ परीर सिल्वन जो एआईएडीएमके के हैं, प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग मौजूद थे बीजेपी के दूसरे नेताओं के अलावा। तो ये भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही रहा, वो जैसा जानकार यहाँ पे मानते हैं। ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह मजबूत है एनडीए और उनके लिए नरेंद्र मोदी भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बूथ पर भी वो हारना नहीं चाहते। पिछली बार 3,37,000 वोटों की मार्जिन से जीते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार क्या होता है, क्या ये उतनी मार्जिन और ज्यादा बढ़ा पा रहे या उससे कम होगी, अब चैलेंज तो उनके सामने ये है। हालांकि अभी अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। अंतर कितना बैठेगा इस बार मतों का, ये बड़ी चुनौती है। बनारस की सीट पे मतदान 19 मई को होगा और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में तो है ही। साथ में जो गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, वो भी पूरी ताकत झोंके हुए है।
ये थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। सलमान रावी ने बनारस में कुछ आम महिलाओं से बात की और जानना चाहा इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में, जहां कुछ महिलाएं यहां पर खड़ी हैं और मोदी जी ने कहा यहां कि अगर 100 मर्द जाते हैं वोट डालने के लिए तो 105 महिलाओं को जाना चाहिए। ये बताइए कि महिलाएं जाती हैं वोट डालने यहां पर?
हाँ जानी। हाँ?
हमेशा जब भी वोट होता है जाते हैं?
हमेशा जानी।
अरे ये बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं महिलाओं की?
यहाँ की समस्या आधा अधूरा काम सब वो था, आवास ना मिला था, पानी हैंडपाइप से पानी पिए,
आवास नहीं मिल रहा है और मंदिर संदिर नहीं बन रहा है, ये सब।
तो ये तो प्रधानमंत्री जी का इलाका है, वो सांसद हैं यहाँ के,
लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं ना, नहीं लैट्रिन, नहीं आवास, कुछ नहीं दे रहे हैं गरीब लोग के।
तो इतना कुछ विकास हुआ है यहाँ पर, तो इतनी सड़कें बनी
है, कुछ नहीं मिला, जाके देख लीजिए सबका घर।
और पढ़ाई वढ़ाई का कैसा है आप लोग के छोटे बच्चे?
ठीक है,
पढ़ाई ठीक है, ठीक चल रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह
सरकारी स्कूल में? तो हमने के बिल्कुल पढ़ाई ना होता,
बिल्कुल
नहीं, टीचर आवन इधर उधर बतकही में लगल, बच्चन तो सरकारी में से कुछ भी पूछला वाला नहीं।
और ये सब जो उज्ज्वला योजना की सब वो सिलेंडर और ये सब
सिलेंडर तो मिला है माला, जैसे वो तो मोदी अपना काट रहे हैं तो बाद में खत्म पैसा जाएगा। अब बिजली जो है वो बहुत बिल आ रहा है, गरीब लोग कहाँ से भरेंगे?
क्या कह रही
है सर? बहुत बिल आ रहा है हम लोग का, हम लोग तो पैखाना कुछ मिलवा ही नहीं किया है, गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को।
आवास वास कुछ नहीं मिला है हम लोग को।
तो अभी उम्मीद है आपको कि अब ये चुनाव, हर बार आप वोट डालने जाते हैं, इस बार भी वोट डालेंगे, उम्मीद है कुछ के कुछ होगा?
अब कोई भी जीतेगा लेकिन हम लोग को मिले ना, हम क्या करें?
आपकी बात सब लोग इतना गुस्सा रहे कि वोट देवे ना जा, जब कुछ मिलता ना हम लोग के तो वोट का देवल जा।
बनारस में कुछ आम महिलाओं की आवाजें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने अजय राय से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि मोदी की दावेदारी इतनी मजबूत लगती है तो कैसे हरा पाएंगे आप उनको?
हम काशी के लोग हैं, हम मिट्टी के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, हम इनसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें यही रहना है। मोदी जी एक आवरण में हैं, बाहर से आए हैं, एसपीजी प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे आम जनता अपनी बात नहीं कर सकती, अपनी बात नहीं मिल सकती। हमें तो एक साधारण आदमी भी हमारा डोर नॉक करेगा और मेरे घर आ जाएगा। तो ये जो एक उनका आवरण था, एक जो चीज़ें थी, वो अब जनता के सामने धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। पिछली बार जब वो आए थे तो बहुत बड़ा एक विश्वास था लोगों के अंदर कि मोदी जी आएंगे तो पूरा एकदम परिवर्तन हो जाएगा, बनारस स्वर्ग हो जाएगा, हजारों हजारों की नौकरियां मिल जाएंगी, सब कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। वो गुजरात मटर ला कर बेच रहे थे पर वो सारी चीज़ें उतर गईं। इस बार लोगों को इन्विटेशन बांटे गए हैं, लगातार एक हफ्ते तक 50 लाख रुपए के गुलाब के फूल खरीद कर लोगों को पैकेट्स में दिए गए कि आप मोदी जी आएंगे के ऊपर वो फूल डालकर स्वागत करेंगे।
लेकिन ये जो जन सैलाब था रोड शो में, ये
सारी भीड़ जुटाई हुई भीड़ थी, इन्विटेशन एक हफ्ते से बट रहा था, बाहर से लोग बुलाए गए थे।
इश्यूज क्या हैं, क्या लेकर लड़ेंगे आप? मोदी जी के पास पद है, उनका प्रधानमंत्री हैं, जीत चुके हैं यहाँ से, और बहुत सारी बातें हैं कहने को जिसके पीछे जनता दीवानी होती है और पीछे पीछे चली जाती है। आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच में उनसे लोहा लेने के लिए?
इस बार लड़ाई जबरदस्त होनी है। 4 स्टेट ने बताया है, अभी जितने चरण हुए हैं उसमें आप देखिए वोट का परसेंटेज गिर गया।
लेकिन ये आप तो मानेंगे कि बनारस में कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना हुआ हो।
आप किसी जनता से पूछ लीजिए, 15 किलोमीटर की सड़क बाबतपुर से बनारस की सड़क छोड़ दीजिए और चाइनीज लाइट लगाकर बनारस का डेवलपमेंट, क्या 15 किलोमीटर की सड़क बनेगी केवल प्राइम मिनिस्टर की? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 14 से लेकर आज तक एक भी कल कारखाने लगे हों जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिली हो, सैकड़ों लोगों को मिली हो, या स्मार्ट सिटी का नाम जो दिया, क्वेटो, सारे अधिकारी यहाँ से गए, मेयर गए, नगर आयुक्त गए, कमिश्नर गए, उसका क्या परिणाम है? करोड़ों रुपया खर्चे हुए क्वेटो के नाम पर, एक भी काम बनारस में नहीं हुआ। मैं विधायक 5 बार था, मिनिस्टर था, लगातार हम लोग जनता का काम करना, जब से विपक्ष में जनता की आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं।
ये थे वाराणसी में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय। और इधर दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या। दिव्या, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मोदी को चुनौती देंगी वाराणसी में, इस तरह की आवाजें चंद रोज पहले बहुत सुनाई दे रही थी और अचानक से आवाज़ें आना बंद हो गई, कहाँ क्या कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में?
ये बहुत चर्चा का केंद्र रहा है संदीप, जब से अजय राय का नामांकन सामने आया। और कुछ हद तक
मैं जरा सा दुरुस्त कर दूं, अभी नामांकन दाखिल नहीं किया उन्होंने,
अभी नाम सामने
लेकिन ये तय हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और ये सोचने की बात है कि कभी भी किसी ने खास तौर पर ये कहा नहीं कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, ये एक कयास था जो कि मीडिया में ही बढ़ता चला गया। लेकिन जब ये नामांकन, माफ़ कीजिए, जब अजय राय का नाम सामने आया तो उसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेसवार्ता हुई। सैम पित्रोदा ने वो प्रेसवार्ता की, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने बताया कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही हैं।
खुद ने सोचा कि rather than concentrating on one seat, she should focus on the job she has at hand. So that decision was finally hers and she decided it.
तो सैम पित्रोदा ने कहा कि ये प्रियंका गांधी का अपना फैसला था, जबकि प्रियंका गांधी से जब भी मीडिया ने ये सवाल पूछा कि वो लड़ेंगी या नहीं वाराणसी से, तो उन्होंने कहा कि जहां से पार्टी चाहेगी, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी चाहेंगे, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। और यही बात कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी कही, सुनिए।
उन्होंने देव वंश से, अगर आपको याद हो, स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं तो बनारस से लड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर है कि वो तय करेंगे कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और पार्टी हाईकमान के फैसला हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हुआ कि वहाँ पे जो हमारे पुराने कैंडिडेट थे अजय राय, उन्होंने पिछले 5 साल काफ़ी मेहनत की है चुनाव क्षेत्र में, तो उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में उनको वहाँ से टिकट दिया।
तो देख सकते हैं आप, दोनों नेताओं ने एकदम विपरीत बात कही, यानी कि हो सकता है पार्टी में भी इसको लेकर एक राय नहीं है कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था या नहीं। दूसरी प्रतिक्रिया अगर हम समझने की कोशिश करें सोशल मीडिया से, तो आपको दो तरह की विचार वहां पे दिखेंगे। एक तो ये कि लोगों के बीच में थोड़ी निराशा है, खासतौर पर जो तबका अपने आप को लिबरल कहता है, उनके बहुत से ट्वीट्स में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने टक्कर दी थी बनारस से 2014 में, उस तरह से ये एक सांकेतिक तौर पर बहुत अच्छा रहता अगर प्रियंका गांधी एक टक्कर देती प्रधानमंत्री मोदी को, जिनको इस वक्त अभी भी बहुत लोकप्रिय माना जा रहा है और वहां से जीतने के लिए उम्मीदवार माना जा रहा है। और दूसरा तबका जाहिर है वो है जो कह रहा है कि ये कांग्रेस की विफलता एक तरह से दिखाता है कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि प्रियंका गांधी को वहां से खड़ा करें और नरेंद्र मोदी को टक्कर दें।
शुक्रिया, ये थी बीबीसी संवाददाता दिव्या।
बीबीसी इंडिया बोल।
चुनावी मैदानों में सितारों की भरमार, जीत की गारंटी देने वाले कलाकारों पर लगते रहे हैं क्षेत्र और वोटरों की उपेक्षा के आरोप, फिर भी राजनीतिक दल क्यों लगाते हैं ग्लैमर पर दाव? इंडिया बोल में होगी पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 27 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त हो चला है विवेचना का। भारतीय वायु सेना के निर्माण में जितनी अहम भूमिका एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह की रही उतनी शायद किसी की नहीं। साल 2002 में उन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स के पद से सम्मानित किया गया। वो इस पद पर बैठने वाले पहले और आखिरी वायु सैनिक थे। मार्शल अर्जन सिंह की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े अहम प्रसंगों पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
स्थान रक्षा मंत्रालय का कार्यालय, कमरा नंबर 108, साउथ ब्लॉक, दिन 1 सितंबर 1965, समय दोपहर 4 बजे। रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान, एयर मार्शल अर्जन सिंह और रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव एससी सरीन, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कुमार मंगलम के साथ गहन मंत्रणा में व्यस्त थे। मुद्दा था छम सेक्टर में उस दिन सुबह हुआ पाकिस्तानी टैंकों और तोपों का जबरदस्त हमला, जिसने भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को अचरज में डाल दिया था। बैठक शुरू हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि थल सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने एयर मार्शल अर्जन सिंह के साथ कुछ देर दबे शब्दों में बात की और रक्षा मंत्री चौहान की तरफ देखकर कहा कि उन्हें छम सेक्टर में वायुसेना के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। वायुसेना के जाने माने इतिहासकार पुष्पिंदर सिंह याद करते हैं।
जब छम में शुरू हुई लड़ाई 1 सितंबर में और पाकिस्तान आर्मर काफी आ गया था आगे और काफी खतरा था इंडियन आर्मी को, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो चौहान ने बुलाया अर्जुन सिंह को। थिंग्स आर लुकिंग वेरी ग्रिम, व्हाट कैन यू डू? He said, sir, give me the go-ahead and in 45 minutes we will be airborne from Pathankot. So, unhone kaha, go. This is the quality of leadership. He had people ready. He had fighter squadrons ready. Andhera ho raha tha. So, between 4:30 when the orders were given, go, aur jab first aircraft were airborne was 45 minutes, first formations were taking off from Pathankot to attack enemy armor Cham mein.
अर्जन सिंह ने सबसे अधिक नाम कमाया 1944 की बर्मा की लड़ाई में, जहां उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया।
उनकी जो कमिशनिंग हुई थी क्रैनविल से 1939 में, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, उसके बाद कोई इंडियन एयरफोर्स के प्यूपल पायलट नहीं गए थे इंग्लैंड को ट्रेनिंग के लिए। जब आए वापस इंडिया तो हमारे ज्यादा तो इंडियन एयरफोर्स एक ही स्क्वाड्रन था नंबर वन, और उनके जहाज तब थे लाइजेंडर, तो इनकी ड्यूटी ज़्यादा थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। जब जापान का इन्वेजन हुआ बर्मा में, तो इम्फाल जो जगह है वैली, नंबर वन स्क्वाड्रन जो तब कमांड कर रहे थे अर्जन सिंह जी एज अ यंग ऑफिसर, आई मीन ही वाज हार्डली 25, दे कैन बी कॉल्ड द सेवियर्स ऑफ इम्फाल, तो उनका नाम भी रहा टाइगर्स ऑफ इम्फाल। नंबर वन स्क्वाड्रन का एम्बलम है टाइगर, डीएफसी मिला ऑन द स्पॉट। नाउ डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इज अ वेरी ग्रेट ऑनर, मगर इनका डबल ऑनर था क्योंकि लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो थे सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कमांड एक्चुअली फ्लू डाउन टू इम्फाल और उन्होंने डीएफसी ऑन द फील्ड दिया स्क्वाड्रन लीडर अर्जन सिंह को।
इससे पहले अर्जन सिंह उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में वजीरिस्तान के मीरन शाह जैसे सुदूर इलाके में तैनात थे। सितंबर 1940 में उन्होंने यहां से 50 उड़ानें भरी और अगले महीने 80। अभियानों के दौरान कई बार उन पर जमीन से गोलीबारी हुई, लेकिन इन सब ने उनके जुझारूपन को तोड़ा नहीं। एयर कोमोडोर जसजीत सिंह मार्शल अर्जन सिंह की जीवनी द आइकन में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
जब अर्जन सिंह तीसरा गोता लगा रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके इंजन पर कोई गोली लगी है। उस समय विमान काफी नीचाई पर था। खैर, किसी तरह कलाबाजियां खिलाते हुए उन्होंने अपने विमान को खैसोरा नदी के पास एक सूखी जगह पर उतार लिया। क्रैश लैंडिंग के दौरान अर्जन सिंह का चेहरा विमान के इंस्ट्रूमेंट पैनल से टकराया और चेहरे पर गहरी चोट आई। लेकिन उस समय अर्जन सिंह को चिंता कुछ और थी। जैसे ही विमान ने क्रैश लैंड किया, उनका गनर गुलाम अली उतरकर दौड़ने लगा। अर्जन सिंह ने देखा कि गुलाम अली उसी पहाड़ी की तरफ भाग रहा है जहां से घात लगाकर कबीले के लोग पहले से ही गोलीबारी कर रहे थे। एक भी लम्हा गंवाए बिना अर्जन सिंह नाक से बहते खून के बावजूद तेजी से उसके पीछे भागने लगे और चारों तरफ से चल रही गोलियों के बीच 50 गज आगे दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे उल्टी दिशा में भागने के लिए कहा जहां विमान ने क्रैश लैंड किया था। हमारी अपनी सेनाएं भी इस नाटकीय घटनाक्रम को देख रही थीं। उन्होंने दोनों को बचाने के लिए कबाइलियों पर हमला बोल दिया।
दुनिया में बहुत कम वायुसेना अध्यक्ष होंगे जिन्होंने मात्र 40 साल की उम्र में ये पद संभाला हो और सिर्फ 45 साल की उम्र में रिटायर हो गए हों। 1965 के युद्ध से 3 महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस में टीवी परशुराम की एक रिपोर्ट छपी थी जिसका शीर्षक था, जब एक फोन कॉल ने पूर्ण युद्ध होना रोका। अखबार ने ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स को उद्धृत करते हुए लिखा था कि पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मार्शल अजहर खान ने अपने पुराने दोस्त एयर मार्शल अर्जन सिंह को एक गोपनीय टेलीफोन कॉल किया जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच पूर्ण रूपेण लड़ाई होते होते रह गई।
पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ थे एयर मार्शल अजहर खान, हमारे थे एयर मार्शल अर्जन सिंह। दोनों सोचो कोलीग्स थे, मैं इम्फाल की बात कर रहा था, और जब नंबर 1 स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे अर्जन सिंह सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट जापानी, अजहर खान वॉज कमांडिंग नंबर 9 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स। अर्जन सिंह वॉज स्लाइटली सीनियर, दे न्यू ईच अदर, एंड अजहर खान वॉज रिगार्डेड अभी तक भी एज द फादर ऑफ द न्यू पाकिस्तान एयरफोर्स। जब रन ऑफ कच्छ का इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 1965 में, तो स्कर्मिश जैसी हो रही थी, तो पता नहीं लगा क्या हो रहा है, मगर पाकिस्तान ने अपना आर्मर वहाँ छोड़ दिया, हमारे जवान जो थे वो दे हैड नो एंटी टैंक वेपन्स, तो थोड़ा एस्केलेट हो रहा था। अर्जन सिंह और अजहर खान ने बात की अपने साथ कि देखो जो हो रहा है हो रहा है, लेट्स कीप द एयरफोर्स आउट ऑफ इट। दोनों बोथ एयर चीफ सेड वी विल नॉट अलाउ टू एस्केलेट। दोनों साइड ने कहा चलो एयर पावर नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद को बाद रूमर के अजहर खान को निकाला गया क्योंकि उसने ऐसे किया, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, बिकॉज अजहर खान वो सो रिटायर एनी वे, ही हैड फिनिश्ड 5 years।
लेकिन जब अंततः लड़ाई हुई तो अर्जन सिंह ने पूरी दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व क्षमता होती क्या है।
उस वक्त ये प्रूव हुआ इनकी डायरेक्शन में कि कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सकता जब तक वायुसेना उस पर पार्ट नहीं लेती है, ये सबक तब था और 65 के बाद इस वक्त जब हम देखते हैं कम से कम 53 साल बाद में, वो जो प्रिंसिपल है निदान है वो अभी भी जारी है। दूसरी, उन्होंने खुद ही युद्ध में वायु सैनिक की कैंपेन जो है वो कैंपेन डायरेक्ट किया। कई बार सेटबैक्स हुए, पठानकोट ही जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे एक पाकिस्तान का हमला बोला गया 6 सितंबर को, काफी जहाज उस वक्त बर्बाद हो गए। तो उस कैंपेन में कलाईकुंडा में भी कुछ कमजोरी थी, वहां भी हमारे कुछ जहाज बर्बाद हुए, मगर इनका कूल हेडेडनेस बिल्कुल नहीं हटा। अगर कोई कठोर कार्रवाई करनी थी वो की, कई कमांडर्स को हटाया गया, मगर वो बिल्कुल डटे रहे और जहां भी सबक सीखे उस युद्ध में वो सबक के उनको इंप्लीमेंट किया कि वो ऐसी गलतियां ना हो।
जब भारतीय पायलट्स ने हलवारा में पाकिस्तान के 2 सैबर जेट्स गिरा दिए तो वो खुद अपना विमान उड़ाकर उन्हें शाबाशी देने वहां पहुंचे। विंग कमांडर विनोद नेब याद करते हैं,
हमारे जो चीफ थे अर्जन सिंह साहब, ये हलवारा में अपने कैनबरा में आए और नेचुरल है कि जो कुछ अवार्ड वगैरह मिले तो ये वो ज्यादा पेश किए जाते हैं आगे, तो उन्होंने मेरे को भी आगे कर दिया कि भाई जरा मिलिए चीफ साहब से। तो मिले, उन्होंने मेरे को पूछ रहे थे your ops duty? I say, yes, sir. He called my CEO. He said, Nobby, why is he ops duty? Yeah. We are training people to shoot aircraft. He's already shot down an aircraft. So he's fully ops. कहने का मतलब यह है कि 6 सितंबर को मेरे को इन्होंने fully ops declare कर दिया. हालांकि मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया था.
अर्जन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत रिसालपुर से की थी, जो इस समय पाकिस्तान में है. पुष्पिंदर सिंह एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं.
मैंने काफी रिसर्च किया ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स. मुझे मौका मिला टू गो टू पाकिस्तान टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल, रिटायर्ड पीपल. और मुझे फिर पूछा उन्होंने कि वुड यू लाइक टू विजिट रिसालपुर, बिकॉज रिसालपुर इज वेयर अर्जन सिंह वॉज द लास्ट स्टेशन कमांडर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. सोचो आजकल रिसालपुर में उनकी अकेडमी है, फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी. इट्स नॉट अ ऑपरेशनल बेस, इट्स अ फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी जैसे हमारी है हैदराबाद में. तो मैं जब जाने से पहले आई वेंट टू सी मार्शल अर्जन सिंह. मैंने कहा सर आई एम गोइंग टू रिसालपुर. ही सेड गिव देम माय रिगार्ड्स एंड आई सेड कैन आई प्रेजेंट योर पोर्ट्रेट इफ यू वांट. तो आई हैड अ नाइस फोटोग्राफ टेकन ऑफ हिम एंड ही साइंड टू से to the whatever station commander etc of the Air Force Station Rasalpur with my regards. So when I went, I was with the commandant. Unke saath baithe chai chai pi rahe the and I made this presentation of the thing. And I'm told, I haven't been after that, that photograph hangs in the gallery of honor at the Pakistan Air Force Academy Rasalpur.
Air Chief Marshal Arjan Singh jab retire hue to unhone har wayu station par farewell visit ki. वो अंबाला भी गए जहां एयर मार्शल सतीश इनामदार उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात थे.
मुझे स्टेशन कमांडर साहब ने कहा भाई आप अर्जुन साहब के एलओ बनोगे आप लाइजन ऑफिसर फॉर हिज टू डेज ऑफ स्टे इन अंबाला. ने बन गए. हाँ कह दिया. जब पहले दिन से मिलने गए हम, जब वहां के ठहरे थे अंबाला में चिनार ब्लॉक में, तो हम लोग दोनों गाड़ी के पास आए. सुबह उनको लेके जाना था स्टेशन कमांडर के पास, उनके लिए गाड़ी आई थी. मैं गाड़ी में गया था उनको लेने के लिए. हम दोनों ब्लॉक के बाहर आए. मैं गया दरवाजा खोलने उनके लिए बाईं तरफ का. सो मुझसे कहते हैं रुक जाओ वेट दरवाजा खोला तो अर्जुन सिंह साहब अंदर गाड़ी में आके बैठे. तो मैं दूसरी तरफ से जाके गाड़ी में बैठने लगा अगली सीट पे. फिर मुझसे कहा कम एट द बैक. उधर दूसरी तरफ से गए पीछे गाड़ी में जाके बैठे. बड़े चक पकाए हुए थे हम. इतने बड़े अवसर के बाद बैठना है. अंदर जाके बैठे तो उन्होंने कहा नाम क्या है तुम्हारा. फ्लाइट लेफ्टिनेंट इनामदार. कौन से स्क्वाड में हो. हमने कहा टू स्क्वाड में. नैट्स. जी हाँ नैट्स. कहते एक बात याद रखना, नो मैटर हाउ सीनियर द ऑफिसर इज कॉट एंड नो मैटर हाउ जूनियर यू आर, यू विल सिट ऑन द रियर सीट अलॉन्ग विद द सीनियर ऑफिसर, नॉट ऑन द फ्रंट सीट. उतरे वहां पे तो जो हमारे स्टेशन कमांडर साहब थे मार्शल जनरल कमांडर जॉन, उन्होंने देखा मुझको पीछे से निकलते हुए गाड़ी में से. मुझसे कहते हैं कि तुमने क्या, तुमने पीछे बैठ के आए. जी हाँ. वाई मार्शल टोल्ड मी टू सिट इन द बैक. अब मुझे ऐसा लगा कि हमारे स्टेशन कमांडर साहब को ये पता नहीं था कि क्या होता है.
2002 में भारत सरकार ने एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को मार्शल ऑफ द एयर फोर्स नियुक्त किया. मार्शल का वही स्थान होता है जो सेना में फील्ड मार्शल का होता है. मैंने एयर वाइस मार्शल कपिल काक से पूछा कि जब आपको ये खबर मिली तो आपको कैसा लगा.
देखिए पहला इमीडिएट रिएक्शन था कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत डिले हुआ था इसका. उससे पहले करियाप्पा साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया था. वैसे ही कुछ देर बाद जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था. अगर आप एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह का प्रोफेशनल करियर रिकॉर्ड देखें, किसी से कम नहीं था. और अगर वो दिखाते थे अपने काम से एक काबिलियत, डेमोन्स्ट्रेट करते, वो एक महान पहला दर्जे के लड़ाकू विमान के पायलट थे. और वो दिखाते थे, ये नहीं कहते तुम करके दिखाओ. पहले वो करते थे, दिखाते थे, और उसके बाद जो उनके जूनियर्स थे वो सबक सीखते थे. इसीलिए वो भारतीय वायुसेना में काफी लोकप्रिय रहे.
मार्शल अर्जन सिंह को रिटायरमेंट के बाद पहले स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत और फिर कीनिया में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया. वो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे. रेहान फजल, BBC दिल्ली.
और चलते चलते जिक्र आईपीएल का, आज आईपीएल में चेन्नई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी ना करने के बजाय गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला किया है। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। दीजिए इजाजत।